ये आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दी। तिहाड़ जेल से निकलकर केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी डिजिटल पहल ईज ऑफ बुकिंग के तहत मल्टीपल जर्नी QR टिकट की शुरुआत की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 15 सितंबर से UPI की भुगतान सीमा 1 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर रहा है और ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित सेमिकॉन इंडिया आज संपन्न हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दे दी। तिहाड़ जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित है। इस मामले में 26 जून को श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर रिहाई के लिए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा है कि श्री केजरीवाल कथित घोटाले से जुड़े मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा जब तक इस बारे में कोई छूट नहीं मिल जाती। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और आरोप वैध हैं। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उनका मुकदमा जारी चलेगा और उन्हें जल्द से जल्द लंबी सजा होगी।
अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है, जांच एजेंसी के पास सबूत है जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप CM के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लेकिन न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि न्यायालय का फैसला सिर्फ श्री केजरीवाल के हक में ही नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के लिए एक आश्वासन भी है कि संविधान उनके हितों का रक्षक है।
आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जमानत का अर्थ ये नहीं है कि श्री केजरीवाल आरोप से मुक्त हो गए हैं और मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अनुसार श्री केजरीवाल जमानत के दौरान मुख्यमंत्री के दायित्वों का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के 1561 उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए 1747 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार भिवानी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 9 उम्मीदवार नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। श्री कुमारस्वामी ने संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ई बसों की खरीद और संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए लगभग 3,435 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अंतर्गत खरीदी गई बसें 12 वर्ष तक चलाई जा सकेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था UPI की भुगतान सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर रही है। उपभोक्ता अब 5,00,000 रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान UPI के माध्यम से कर सकेंगे। अस्पताल, कर भुगतान, शैक्षणिक भुगतान, IPO और सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले भुगतान इस श्रेणी में शामिल हैं। NPCI ने UPI प्लेटफॉर्म में एक नई व्यवस्था UPI लागू की है। इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता अपने खाते में पारिवारिक सदस्यों और मित्रों को डिजिटल भुगतान के लिए जोड़ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने अपनी डिजिटल पहल ईज ऑफ बुकिंग के तहत मल्टीपल जर्नी QR टिकट MGQRT की शुरुआत की है। MGQRT को दैनिक QR टिकट खरीदने की आवश्यकता को समाप्त कर यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ये कई यात्राओं के लिए एक सहज और निर्बाध यात्रा की सहूलियत प्रदान करता है। MGQRT के लिए उपयोगकर्ताओं को दिल्ली साथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर पंजीकरण करना होगा और इसके बाद प्रक्रिया का पालन करते हुए यात्रा की जा सकती है। इसमें यात्री को टिकट राशि पर छूट भी प्रदान की जाएगी। MGQRT वर्तमान में उपयोग में आने वाले पारंपरिक स्मार्ट कार्ड के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा किफायती विकल्प के रूप में कार्य करता है और इसमें कोई सुरक्षा जमा राशि आवश्यक नहीं है। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह हीरक जयंती सत्र का उद्घाटन करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य ने बताया कि हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय इस वर्ष का राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की आवासीय योजना को लेकर जनता की प्रश्नों की प्रभावी ढंग से बाधा रहित उत्तर लेने के लिए रविवार और सोमवार को कॉल सेंटर खुला रखने का निर्देश दिया है। DDA के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि खरीदार या इच्छुक व्यक्ति 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। DDA के अनुसार सस्ता घर योजना और मध्यम वर्गीय योजना की बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से आरंभ हुई है। योजना को खरीदारों से प्रभावशाली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसमें केवल 3 दिनों में 1400 से अधिक फ्लैट बिक गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज ने आज एक वीडियोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। सेंटर के निदेशक प्रोफेसर रविन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रतियोगिता 1947 के विभाजन की त्रासदी में बचे लोगों की पहचान करने और उनकी तथा उनके परिवारों की कहानियों, अनुभवों और संस्मरणों को साझा करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी इस महीने की 30 तारीख तक प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। श्री कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों, विभागों और सेंटरों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया कि राजधानी के डियर पार्क बीपीएस से मुनिरका डीडीए फ्लैट्स तक 500 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन बिछाने के कारण अगले सप्ताह बुधवार शाम गुरुवार सुबह तक कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली के ग्रीन पार्क, सफदरजंग इनक्लेव, एसडीए हौसखास, मुनिरका, किशनगढ़, मस्जिद मोड़, महरौली, आईआईटी, आईएनयू, एम्स, सफदरजंग अस्पताल और डियर पार्क यूजीआर के आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज समापन हो गया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र के दिग्गजों सहित कंपनियां, विशेषज्ञ शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मेटेरियल्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सेमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनुचा ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया 2024 किसी भी देश में आयोजित सबसे सफल और सबसे बड़ा सेमिकॉन है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।
भारत गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस करी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा यूजफुल है कि फॉरेन कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज आकर यहाँ पर अपने यूनिट्स खोलेंगे। उसके नतीजा ये हुआ है कि हमने विद इन 2 साल में 5 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनाउंस कर चुके हैं।
एसीईएस के विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पहले सेमीकंडक्टर विनिर्माण केवल कुछ देशों तक ही सीमित था और कंपनियों को उन पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब सेमिकॉन इंडिया जैसे आयोजनों से एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है जो क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा।
भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिसमें ये लोग अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इंडिया में अपना प्लांट वगैरह सेटअप करें।
सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शकों और 150 वक्ताओं ने भाग लिया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, ग्रेटर नोएडा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हाल ही में संपन्न पैरालंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को एक कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति पैरा खिलाड़ियों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश से मौसम सुहाना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही कई इलाकों में लोगों को जलभराव और यातायात बाधित रहने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
राजधानी के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति रही, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के नरेला, सिविल लाइन, रोहिणी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में जलभराव की स्थिति रही। वहीं कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की भी सूचना है, जिसके कारण जगह जगह यातायात बाधित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दी। तिहाड़ जेल से निकलकर केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी डिजिटल पहल ईज ऑफ बुकिंग के तहत मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट की शुरुआत की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 15 सितंबर से यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर रहा है। और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित सेमिकॉन इंडिया आज सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।